सातवाहन युगीन संस्कृति। लगभग 3 शताब्दियों तक दक्षिण पथ की राजनीति में सातवाहन सक्रिय रहे। उनके काल में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से दक्षिणी भारत की महत्वपूर्ण प्रगति हुई। यहाँ हम सातवाहन कालीन दक्षिणी भारत की शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा और कला एवं साहित्य के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत करेंगे। शासन व्यवस्था। सातवाहन राजनीति में मौर्य नरेश के आदर्श पर ही अपने प्रशासन का संगठन किया। शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक ही था। सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। वह अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास करता था। नासिक लेख में गौमती पुत्र सत्यकर्णी की गौतमी पुत्र सत्यकर्णी की तुलना कई देवताओं से की गई है। सातवाहन नरेश राजन राजराज महाराज तथा शकों के अनुकरण पर स्वामी जैसी उपाधियां धारण करते थे। रानी या देवी तथा महादेवी की उपाधि धारण करती थी। यद्यपि राजाओं के नाम मातृ प्रधान है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तराधिकार पुरुष वर्ग में ही सम्मिलित था तथा वंशानुगत होता था। कभी कभी राजा की मृत्यु के बाद यदि उसका पुत्र अवयस्क होता था तो उसके पुत्र को राजपद दे दिया जाता था। इस काल की दो रानियां नागानी का सत्कर्णी प्रथम की रानी तथा गौतमी बलश्री गौतमी पुत्र सत्कर्णी की माता ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, परंतु ऐसे उदाहरणों को अपवाद स्वरूप ही ग्रहण करना चाहिए। सम्राट की सहायता के लिए अमात्य नामक पदाधिकारी का एक सामान्य वर्ग होता था। गौतमी पुत्र तथा उसके पुत्र पुलवामी ने महासेनापति नामक एक उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, परंतु उसके कार्यों के विषय में तत्कालीन लेखों से हमें कोई सूचना नहीं मिलती। संभवतः कुछ सेनापति साम्राज्य के बाह्यवर्ती प्रदेशों की देखरेख के लिए नियुक्त होते थे तथा अन्य केंद्रीय शासन के विभागों की देखरेख के लिए करते थे। स्थानीय शासन अधिकांशतः सामंतों द्वारा चलाया जाता था। कार्ले तथा कन्हेड़ी के शब्दों में मराठी तथा महाभोज का उल्लेख मिलता है। ये बड़े सामंत थे तथा उन्हें अपने अपने क्षेत्रों के निमित्त सिक्के उत्कीर्ण करवाने का अधिकार था। पश्चिमी घाट के ऊपरी भाग में महाराठी तथा महाभोज उत्तरी कोकण में सामंत थे। उनका पद अनुवांशिक होता था। इन सामंतों के अधिकार अमात्यों से अधिक होते थे तथा वे अपने अधिकार से भूमिदान कर सकते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम, केंद्रीय नगर तथा कई गांव होते थे। लेखों से गोवर्धन, सोपाड़ा, मामल, सातवाहन आदि आहारों के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य के अधीन होता था। गौतमी पुत्र सत्कर्णी तथा मालवी के समय में विष्णुपालिक ने सम्यक तथा शिव स्कंद दत्त ने गोवर्धन आहार का बारी बारी से शासन चलाया था। जो अमात्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा में रहते थे उन्हें राजा अमात्य कहा जाता था। सातवाहन लेखों में प्रशासन के कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे भंडागाड़िक कोषाध्यक्ष, रज्जुक राजस्व विभाग प्रमुख, नई घड़क नगरों में जलपूर्ति का प्रबंध करने वाला अधिकारी, कर्मांतिक भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला सेनापति आदि। आहार के नीचे ग्राम होते थे। प्रत्येक ग्राम का अध्यक्ष एक ग्रामीण होता था जो ग्राम शासन के लिए उत्तरदायी था। हाल ही की गाथा सप्तशती में ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। इसके अधिकार में 5 से 10 तक ग्राम होते थे। कुछ लेखों में महापति शब्द मिलता है। यह संभवतः कुछ किसानों के परिवारों का प्रमुख होता था। नगरों का शासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। लेखों में भड़ुकच, भड़ोच, सोपाड़ा, कल्याण, पैठन, गोवर्धन, घनकटक आदि नगरों के नाम मिलते हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। निगम तथा सभा में स्थानीय जनता के प्रतिनिधि रहते थे। ऐसा लगता है कि ग्रामीणों तथा नगरों को स्वशासन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई थी। नासिक प्रशस्ति के सातवाहनों के शासन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इनमें ज्ञात होता है कि गौतमी पुत्र एक आदर्श शासक था। वह दूसरों को अभयदान देने के लिए सदा तैयार रहता था। अपराधी शत्रु को मारने में भी उसकी रुचि नहीं थी। वह प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता था। उसने स्मृति ग्रंथों में निहित नियमों के अनुसार ही अपने प्रजा पर कर लगाए थे। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि सत्वाहन नरेश प्रजापाल वत्सल थे तथा उनका शासन दया और उदारता से परिपूर्ण था। इस क्षेत्र में उन्होंने मौर्यों का ही अनुकरण किया था। सत्वाहन राजाओं ने ब्राह्मणों तथा शर्मनों को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की। इस प्रकार की भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। कालांतर में इसी प्रकार के अनुदानों ने सामंतवाद के विकास में योगदान दिया। इसे केंद्रीय नियंत्रण शिथिल हो गया। सामाजिक दशा। सत्वाहन युगीन समाज श्रम धर्म पर आधारित था। वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था। परंपरागत चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। सत्वाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, जिसने समाज में सर्ववर्ण धर्म का समाज में वर्णाश्रम धर्म को स्तर पर प्रतिष्ठित करने तथा वर्ण संकट को रोकने का प्रयास किया था। इस समय अनेक नई नई जातियां व्यवसायों के आधार पर संगत तो होने लगी थी। इस काल के समाज की प्रमुख विशेषता शकों तथा यवनों का भारतीयकरण है। अनेक शकों के नाम भारतीयकृत मिलते हैं, जैसे धर्मदेव, वृषभ दत्त, अग्निवर्मन आदि। हिंदुओं के समान ही वे तीर्थ यात्रा पर जाते थे, यज्ञों का अनुष्ठान करते थे तथा ब्राह्मणों को दान दिए दक्षिणा देते थे। यद्यपि सत्वाहन नरेशों ने वर्ण संकट को रोकने का प्रयास किया था, फिर भी व्यवहार में अंतर्जातीय विवाह होते थे। सत्कर्णी प्रथम के अंकुल की महारठी क्षत्रिय की पुत्री नागानिका से तथा पुलवामी के रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। कभी कभी वे शासन के कार्यों में भाग लेती थी। नागानिका ने अपने पति की मृत्यु के बाद शासन का संचालन किया था। बलश्री ने अपने पुत्र गौतमी पुत्र के साथ मिलकर शासन किया था। सत्वाहन राजाओं के नाम का मत प्रधान होना स्त्रियों के सम्मानपूर्ण सामाजिक स्थिति का सूचक माना जा सकता है। इस समय के अभिलेखों में स्त्रियों द्वारा प्रभुत दान दिए जाने का उल्लेख है। इससे ऐसा लगता है कि वे संपत्ति की भी स्वामिनी होती थी। मूर्तियों में हम उन्हें अपने पतियों के साथ बौद्ध प्रतीकों की पूजा करते हुए, सभाओं में भाग लेते हुए तथा अतिथियों का सत्कार करते हुए पाते हैं। उनके सार्वजनिक जीवन को देखते हुए ऐसा स्पष्ट है कि वे पर्याप्त शिक्षित होती थी तथा पर्दा प्रथा से अपरिचित थी। धार्मिक दशा। सत्वाहन राजाओं का शासनकाल दक्षिणी भारत में वैदिक तथा बौद्ध धर्मों की उन्नति का काल था। स्वयं सत्वाहन नरेश वैदिक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। सत्कर्णी प्रथम ने अनेक वैदिक यज्ञों अश्वमेध, राजसुई आदि का अनुष्ठान किया था तथा इस अवसर पर उसने गौ, हस्ती, भूमि आदि की दक्षिणा स्वरूप प्रदान की थी। उन्होंने अपने एक पुत्र का नाम वेदश्री रखा तथा संकरण, वासुदेव, इंद्र, सूर्य और चंद्र की पूजा की। हाल की गाथा सप्तशती के प्रणाम में शिव की पूजा की गई है तथा इंद्र, कृष्ण, पशुपति एवं गौरी की पूजा उन्होंने उसमें उल्लेखित मिलता है। गौतमी पुत्र सत्कर्णी को नासिक प्रशस्ति में वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। सत्वाहन लेखों में शिव पलित, विश्वदत्त, कुमार आदि नाम मिलते हैं, जिससे शिव तथा स्कंद की पूजा की सूचना मिलती है। इसी प्रकार विष्णु पलित जैसे नामों से विष्णु पूजा का संकेत मिलता है। परंतु स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी सत्वाहन अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उन्होंने अपने शासन में बौद्ध धर्म को भी संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। ईसा के प्रथम दो शताब्दियों जो सत्वाहनों के पुनरुत्थान का काल था, इस धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ। यह दो सौ वर्षों का काल दक्षिण में बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक गौरवशाली युग था। इस समय पश्चिमी दक्कन में छहरातों तथा सत्वाहनों ने बिहारों का निर्माण कराने के लिए पारस्परिक होड़ सी लग गई। सत्वाहन काल में दक्कन की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। कार्ले तथा नासिक में अनेक गुहा विहारों तथा युद्ध चैत्यों का निर्माण हुआ। अमरावती, नागार्जुन की कोण, श्रीशैल आदि इन धर्म के प्रधान केंद्र थे। सत्वाहनों के उत्तराधिकारी इस वंशी राजाओं इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के समय में भी बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। नागार्जुन कोण तथा यज्ञपेट में अनेक स्तूप चैत्य तथा विहार बनवाए गए। सातवाहन युग में स्तूप वृक्ष बुद्ध के चरित्र चिन्हों चरण चिन्हों त्रिशूल धर्मचक्र बुद्ध तथा अन्य बड़े संतों के धातु अवशेषों की भी पूजा की जाती थी। बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा इस समय की एक अन्य सामान्य प्रथा थी। इस समय बौद्ध संघ के अंतर्गत कई संप्रदाय हो गए थे, जैसे दयानीय बदायनीय ये नासिक तथा कन्हेड़ी में रहते थे, धम्मोत्तरीय ये समूह सपोड़ा में निवास करते थे तथा महासंधि कार्य तथा उसके आसपास निवास करते थे। परंतु इन संप्रदायों के बीच आपसी कलह तथा अद्वेष की भावना नहीं थी और कभी कभी एक ही विहार में कई संप्रदाय के भिक्षु निवास करते थे। आर्थिक दशा। सातवाहन युग दक्षिण भारत के इतिहास में समृद्धि एवं संपन्नता का युग था। इस काल में लेखों में भूमि तथा ग्राम दान में दिए जाने के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। इससे भूमि की महत्ता प्रतिपादित होती है। भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम उल्लेखीय साक्ष्य सातवाहनों के समय ईसा पूर्व प्रथम सती में ही मिलता है, जब महाराष्ट्र में अश्वमेघ यज्ञ के समय उपहार स्वरूप पुरोहितों को एक गांव दिया गया था। राजा के पास अपनी निजी भूमि होती थी, किसान भी भूमि के स्वामी होते थे। यदि राजा किसी दूसरे की भूमि का दान करना चाहता था तो उसे उसके स्वामी से खरीदना पड़ता था। राजा कृषकों के उपज का छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था। कृषि की उन्नति के साथ ही सभा व्यापार व्यवसाय की बहुत अधिक प्रगति हुई। मलिंदपन में 75 व्यवसायों का उल्लेख हुआ है, जिनमें लगभग 60 प्रकार के व्यवसाय विभिन्न कला के कौशलों से संबद्ध है। महावस्तु में राजगिरी के पास निवास करने वाले 36 प्रकार के शिल्पियों का विवरण दिया गया है। तत्कालीन लेखों में भी कुंभकार, लोहार, स्वर्णकार, धनिया धनिक अनाज के व्यवसायी शिल्पियों का विवरण दिया गया है। तत्कालीन लेखों में भी कुंभकार, लोहार, स्वर्णकार आदि धनियों के व्यवसायी वंशकर्ण बांस का काम करने वाले तिल पीसक तेली चर्मकार कासाकार कांसे के बर्तन बनाने वाले गांधिक गंधी कोलिक बुनकर और यांत्रिक जलयंत्र चलाने वाले आदि व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक व्यवसायिक संघ की अलग अलग श्रेणी होती थी, जिसका प्रधान श्रेष्ठ कहा जाता था। चर्मकार कांसाकार कांसे के बर्तन बनाने वाले गांधी गांधी कोलिक बुनकर और यांत्रिक जलयंत्र चलाने वाले आदि व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक व्यवसायिक संघ की अलग अलग श्रेणी अर्थात गिल्ड होती थी, जिसका प्रधान श्रेष्ठ कहा जाता था। श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहते थे। श्रेणियों के अपने अलग अलग व्यावसायिक नियम होते थे, जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। इन्हें राज्य की ओर से मान्यता प्राप्त थी। वे बैंकों का भी काम करती थी और इस रूप में रुपया जमा करती थी तथा ब्याज पर धन उधार देती थी। नासिक लेख से पता चलता है कि गोवर्धन में बुनकरों की एक श्रेणी के पास 2000 कहा पासों पाणों कर्णों की अक्षय निधि अस्थायी निक्षेप या पूंजी 1% मासिक ब्याज की दर पर जमा की गई थी। इसी प्रकार एक अन्य निधि 1000 कहापणों की भी, जिस पर 3/4% मासिक ब्याज दे था। श्रेणियां अपने नाम से दान दे सकती थी। इसके सिक्के तथा मुहरे भी मिलते हैं। व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबों के सिक्के का प्रयोग होता था, जिन्हें कर्षापण कहा जाता था। इसके अतिरिक्त सातवाहनों ने शीशे के भी सिक्के ढलवाए, क्योंकि दक्षिण में चांदी अनुपलब्ध होने से शीशा ही एकमात्र विकल्प था। ये सिक्के आर्थिक लेनदेन में अधिक उपयुक्त थे। शीशे के सिक्कों का वजन 500 ग्रेन के लगभग है। हैदराबाद संग्रहालय में सातवाहनों के लगभग 50,000 सिक्के संग्रहित हैं, जिनसे इस समय के शिल्प और व्यवसाय पर प्रकाश पड़ता है। सातवाहन काल में आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही व्यापार उन्नति पर था। पेरिप्लस टॉलेमिक के भूगोल तथा सातवाहन लेख एवं मुद्राओं से तत्कालीन व्यापारिक प्रगति की सूचना मिलती है। व्यापार वाणिज्य को शासकों द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई थी। देश के भीतर पैठन प्रतिष्ठान तगड़ जुन्नार करहाटक नासिक वैजयंती धान्य कटक बीजापुर आदि अनेक व्यापारिक नगर थे। वे एक दूसरे से चौड़ी सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने एवं ले आने की सुंदर व्यवस्था थी। पूर्वी तथा पश्चिमी भागों के बीच पर्याप्त यातायात होता था। गोलकुंडा अर्थात हैदराबाद तगड़ तेर तथा पैठन के मार्ग भरोच को जाता था। भरोच पश्चिमी भारत की सर्व प्रमुख मंडी थी। टालमी इसे विशाल में पाण्य नगर मार्केट टाउन कहता है। यहाँ से उज्जैनी प्रतिष्ठान नगर तथा अन्य व्यापारिक केंद्रों को मार्ग जाते थे। प्रतिष्ठान रोमन माल की प्रमुख मंडी थी। यहाँ से मार्ग पूर्व की ओर जाते हुए धान्यकड़क तथा कृष्णा गोदावरी घाटी के अन्य नगरों को जोड़ता था। प्रतिष्ठान तथा धान्यकड़क दोनों में सातवाहनों की राजधानी थी तथा यह व्यापार वाणिज्य के प्रमुख केंद्र थे। भरोच के नीचे सोपड़ा स्थित था जो कल्याण नगर का पत्तन था। यहाँ से सड़ावर्ती को सीधा मार्ग जाता था। भरोच तथा सोपड़ा के बीच व्यापार में होड़ लगी रहती थी। कल्याण भी एक अच्छी मंडी था जो प्रतिष्ठान से ही भी जुड़ा था। पेड़ी प्लस से सूचित होता है कि भृगु कक्ष जिसे भरोच भी कहते हैं आने वाले रोमन राजों को सतवाहन सैनिक बलात् कल्याण तथा सोपड़ा ले जाते थे जिससे शकों को उनसे लाभ न मिल सके। ऐसा प्रतीत होता है कि सोरस तथा मालवा पर अधिकार को लेकर जो शकों द्वारा तथा सतवाहनों में दीर्घकालीन संघर्ष हुआ उसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र में समृद्ध व्यापार नियंत्रण स्थापित करना ही था। साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर अनेक प्रसिद्ध बंदरगाह थे। टालमी गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच इसी अनेक बंदरगाहों का उल्लेख करता है तथा बताता है कि इन स्थानों से मालवीय द्वीप तथा पूर्वी एवं पूर्वी द्वीपों के लिए जहाज जाते थे। पूर्वी दक्कन के दक्षिण बंदरगाह कंठकोस्तील कोद्दूर उल्लोसिंगे आदि थे। पश्चिमी दक्कन में बेड़ी गाजा जैसे भरोच सोपड़ा कल्याण जैसे प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित है। यहाँ से पश्चिमी देशों के लिए जहाज आते जाते थे। पहली शताब्दी ईस्वी में एक यूनानी नाविक हिपोलस ने भारतीयों को अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं के विषय में बताया। पहली शताब्दी ईस्वी में एक यूनानी नाविक हिपोलस ने भारतीयों को अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं के विषय में बताया। फलस्वरूप भारतीय व्यापारी अरब सागर होकर पश्चिमी एशिया के बंदरगाह पर पहुंचने लगे। कहा जाता है कि पालस की खोज के पूर्व जहां मिस्र के नगरों से पूर्व की ओर साल में लगभग 20 जहाज जाते थे वहीं उसके बाद अब प्रतिदिन औसतन एक जहाज जाने लगा। लगभग भारत का व्यापार मिस्र रोम चीन तथा पूर्वी द्वीप समूह के साथ होता था। सातवाहन नरेशों के कुछ सिक्कों पर दो तलवारों वाले जहाज के चित्र मिलते हैं। यह समुद्री व्यापार के विकास होने का सूचक है। पुलुमामी के समय में पूर्वी दक्कन में जहाज रानी का एक ऐतिहासिक युग प्रारंभ हुआ जो यज्ञश्री के समय पूर्ण विकसित हो गया। इसके पास एक विशाल जहाजी बेड़ा था। दक्कन से रोम के निवासी अपने लिए रत्नमल मलमल तथा विलासिता की सामग्रियां प्राप्त करते और उनके बदले में मुँह मांगा सोना देते थे। भारत के से निर्यात होने वाली वस्तुओं में रेशमी कपड़े तथा मलमल चीनी इलायची लौंग हीरे मानिक मोती आदि थी। आयात की वस्तुओं में रोमन मदिरा तांबा रांगा सीसा दवाएं आदि प्रमुख थी। यह व्यापार भारत के लिए लाभकारी था। इस व्यापार के फलस्वरूप सातवाहन साम्राज्य आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बन गया। पश्चिमी देशों के साथ साथ सातवाहन काल में श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीप समूह जावा सुमात्रा आदि के साथ व्यापार मुख्यतः जलमार्ग से होता था। पेरिप्लस से पता चलता है कि द्वीप पोदुका के समीप नौकाओं का निर्माण होता था जिनसे सुवर्ण भूमि की यात्रा की जाती थी। श्रीलंका तथा सुवर्ण भूमि की यात्रा के लिए मुख्य बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जो पाटलिपुत्र से एक सड़क मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ था। ताम्रलिप्ति से पूर्वी द्वीपों को जाने वाला जहाज या जो बंगाल के तटवर्ती प्रदेश तथा बर्मा से या सीधे बंगाल की खाड़ी को पार कर जाते थे। पूर्वी द्वीप सुगंधित मसालों के लिए प्रसिद्ध थे, जिनकी प्रबल लालसा भारतीय व्यापारियों को वहां खींच ले जा गई। कालांतर में सांस्कृतिक प्रचारों ने संबंध को दृढ़तर बनाया। मिलिंद पंत ने भी पता चलता है कि भारत में अलसंद अर्थात मिस्री सिकंदरिया सुवर्ण भूमि तथा चीन को नियमित जहाज जाया करते थे। यह सुविकसित विदेशी व्यापार पुरुषपुर तक्षशिला मथुरा कौशाम्बी पाटलिपुत्र उज्जैनी तथा प्रतिष्ठान जैसे प्रसिद्ध नगरों में फलने फूलने वाली आंतरिक वाणिज्यिक गतिविधियों द्वारा पोषित होता था। पेरिप्लस से पता चलता है कि सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों की जनसंख्या संगठित तथा लोग समृद्धिशाली थे। चार पहिए वाले गाड़ियों में बैठन से बहुत अधिक मात्रा में इंद्रगोमणि तगड़ से मलमल तथा अन्य वस्त्र पश्चिमी भाग में स्थित व्यापारिक केंद्रों में पहुंचते थे तथा वहां से उन्हें भरोच भेजा जाता था। तो पश्चिमी देशों से मालवाहक जहाज भी भरोच पहुंचते थे। भरोच से स्थल मार्गों द्वारा सामान अन्य स्थानों से भेजा जाता था। इस प्रकार भरोच इस काल का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। शक सातवाहन युग में जो व्यापारिक प्रगति प्रारंभ हुई वह उसी वेग से कुषाण काल में भी चलती रही। वस्तुतः ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा की दूसरी शताब्दी तक भारत में सिक्कों की भी प्रचुरता देखने को मिलती है। बहुसंख्यक तांबे कांस्य शीशे और पोटीन के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो विकसित सभ्यता विकसित व्यवसाय में वाणिज्य की सूचना देते हैं। सामान्य लेन देन इन्हीं के माध्यम से होता था। भाषा तथा साहित्य सातवाहन काल में महाराष्ट्री प्राकृत भाषा दक्षिणी भारत में बोली जाती थी। यह राष्ट्रभाषा से सातवाहनों के अभिलेख इसी भाषा में लिखे गए हैं। सातवाहन स्वयं विद्वान विद्याप्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा एक महान कवि था, जिसने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान नीति काव्य की रचना की थी। इसमें कुल 700 आर्य छंदों का संग्रह है, जिसका प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र है। इस प्रकार इसके पद मुक्तक काव्य के प्राचीनतम उदाहरण है। हाल के दरबार में गुणाढ्य तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह मूलतः पैसाची प्रकृति में लिखा गया था तथा इसमें करीब 1,00,000 पदों का संग्रह था, परंतु दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ आज हमें अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है। इस ग्रंथ में गुणाढ्य ने अपने समय की प्रचलित अनेक लोक कथाओं का संग्रह किया है। अनेक अद्भुत यात्रा विवरणों तथा पढ़ने प्रसंगों का इस ग्रंथ में विस्तृत विवरण मिलता है। सर्ववर्मन ने कालांतर नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। बृहस्त कथा के अनुसार कालांतर की रचना का उद्देश्य हाल को सुगमता से संस्कृत सिखाना था। इसकी रचना अत्यंत सरल शैली में हुई है। इसमें अति संक्षेप में पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों का संग्रह हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय संस्कृत भाषा का भी दक्षिण में व्यापक प्रचार हुआ। बृहत कथा से ज्ञात होता है कि हाल की एक रानी मलयवती संस्कृत भाषा की विदुषी थी। उसने हाल को संस्कृत सीखने के लिए प्रेरित किया था, जिसके फलस्वरूप कातंत्र की रचना की गई थी। कन्हेड़ी के एक अभिलेख में एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती हैं। इस प्रकार सातवाहन युग में दक्षिणी भारत में प्राकृत एवं संस्कृत दोनों ही भाषाओं का समान रूप से विकास हुआ।